फोटो सेशन के बाद दुल्हन को वापस घर ले जाया गया था। अंतरा भी अहाना के साथ गई थी। अधिकांश बाराती खा पी कर लड़की वालों द्वारा किए गए इंतजामों का आनंद उठाने लगे थे। होटल के आलीशान कमरों में हर सुख सुविधा के साथ अपनी रात यहाँ गुजारने को तत्पर थे। वहाँ जाकर सारी रात जाकर शादी देखने से बेहतर उन्हें यही लगा था। आसपास से आए लोग भी खा पी कर अपने अपने घर रवाना हो गए थे। लड़की वाले लगभग घर जा चुके थे। दृशांत यहाँ रुका था ताकि सब इंतजाम देख सके। कुछ देर बाद जयेश जी के बोलने पर दृशांत परिवार के कुछ सदस्यों संग अक्षय को लेकर एक बार फिर शुक्ला निवास पहुंच चुका था। आहाना की रस्में पूरी हो चुकी थी। अब मंडप पर बैठा अक्षय पंडित जी के बताए अनुसार विधियों को पूरा कर रहा था, जिसके बाद एक बार फिर आहाना यहाँ आने वाली थी। वहाँ होटल में तो बेचारा नज़र भर उसे देख भी नहीं सका था। हमेशा कोई ना कोई उनके बीच आ ही रहा था। आहाना ने तो दोबारा पलकें उठाकर उसे देखा तक नहीं था, दृशांत ने सोचा। और शर्मिला अक्षय भी सबके सामने बस चोर नज़रों से कुछ पल ही उसे देख पाया था। कैमरामैन अपने काम में लगे थे। दो दो पंडित मिलकर रस्में करवा रहे थे। दोनों परिवार के कुछ खास रिश्तेदार और परिवारजन वहां बैठे इस विवाह के साक्षी बन रहे थे। अन्वय अपना फ़ोन पकड़े पूरी शादी रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि विवाह की वेदी पर बैठे अक्षय की बेताब निगाहें बार बार छत पर बने उस कमरे की ओर जा रही थी जहां इस वक्त आहाना थी। कुछ देर बाद वधू को एक बार फिर विवाह मंडप पर बिठाया गया था। पल्लवी और अंतरा संग सकुचाती शर्माती आहाना उसके बगल में आकर बैठ गई। अक्षय ने नज़र भर देखा था उसे। चिली रेड येलो बॉर्डर प्योर सिल्क कांजीवरम साड़ी में सोने के गहनों से सजी आहाना हल्के मेकअप और सादगी में भी बेहद हसीन लग रही थी। सर पर उसने चुन्नी की सुर्ख चुनरी ओढ़ी हुई थी। जब आहाना उसके बगल में आकर बैठी और अनजाने तौर पर उसकी हथेली ने उसे स्पर्श किया तो अचानक ही अक्षय का दिल कुछ अलग अंदाज में धड़का और लबों पर मीठी सी मुस्कान उभर आई, जिसे उसने बमुश्किल छुपाया और पंडित के साथ मंत्र दोहराते हुए आगे की रस्में करने लगा। जैसी जैसी रस्में पूरी होती जा रही थीं, विधियां आगे बढ़ रही थीं, विवाह संपन्नता की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे आहाना के मन में अजीब सी व्याकुलता घर करती जा रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर रस्म के साथ वो जितना अक्षय से जुड़ती जा रही थी उतना ही अपने माता पिता और परिवार से दूर होती जा रही थी। उसका मन अधीर था, फिर भी वो स्थिर बैठी हर रस्म पूरी निष्ठा से निभा रही थी। पर जैसे ही कन्यादान के लिए जयंती जी और जयेश जी आगे आए, आहाना के झुकी पलकों के नीचे से चुपके से आंसू की एक धार निकलकर रुखसारों पर बिखर गई। कन्यादान और हाथ पीले करने की रस्म के बाद जब दोनों आहाना को अक्षय को सौंप कर जाने लगे तो आहाना सुबकने लगी। यहाँ उसकी आंखें भीगी सो एक पल को भी ना सूखी। पीछे औरतें बैठकर विवाह के मंगल गीत गा रही थीं। आहाना के पास बैठी अंतरा और पल्लवी की आंखें भी भर आई थीं। दृशांत ने सबसे छिपकर अपने आंसू पोंछे थे, जबकि निशांत भाभी के आंचल में मुंह छुपाए रो पड़ा था। जयंती जी और जयेश जी भारी मन से पीछे जाकर बैठ गए थे। अन्वय ने अंतरा की आंखों में आंसू देखे तो उसका मन भी बेचैन हो गया। कुछ देर बाद मंगल फेरे शुरू हुए, जिसके साथ अक्षय और आहाना ने अग्नि को साक्षी मानकर विवाह के वचनों को दोहराया। फेरों के बाद शादी की सबसे मुख्य रस्म होनी थी। पल्लवी ने चुनरी से आहाना के चेहरे को ढंगते हुए उसके मांग टीके को हटाया तो अक्षय ने उसकी सूनी मांग को अपनी मोहब्बत के सुर्ख रंग से सजा दिया। हजामिन की मदद से उसके पैरों की उंगलियों में चुटकी पहनाई, फिर काले मोतियों में गुथे सिंपल से मंगलसूत्र को उसे पहना दिया, जिसमें लगे छोटे छोटे डायमंड उसे खूबसूरत बना रहे थे। विवाह संपन्न हो चुका था। अक्षय और आहाना शादी के अटूट बंधन में बन चुके थे। सभी रस्मों रिवाजों को निभाते हुए एक दूसरे को स्वीकार कर चुके थे और एक दूसरे से जुड़ चुके थे। यहाँ से दोनों को नीचे ले जाया गया, जहाँ उन्होंने कुलदेवी देवता का आशीर्वाद लिया। कुछ रस्में वहाँ भी पूरी की गईं, जो इसकी साक्षी थीं कि अब से वो एक हैं और साथ ही दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने वाले हैं। जीवन में चाहे कैसी ही परिस्थिति आए, हर सुख दुख हर विपता में वो एक दूसरे का सहारा बनेंगे और आजीवन इस रिश्ते को निभाएंगे। आहाना अब शांत थी, किसी यंत्रचालित गुड़िया जैसे उसे जो कहा जाता सब करती जा रही थी। इन रस्मों के पूरे होते होते 7 बज गए थे। विदाई में अभी वक्त था तो आहाना को कमरे में ले जाया गया। अक्षय को नीचे वाले कमरे में ठहराया गया था, जहां उसे फ्रेश होकर बदलने के लिए दूसरे कपड़े दिए गए थे। उसका नाश्ता भी वहीं लाया गया था, तो वहीं बाकी सबके बीच आंगन में चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। सुर्ख लाल बनारसी साड़ी में लिपटी आहाना की आंखें भी कुछ उसी के रंग में रंगी थी। हाथ मुंह धोकर वो फ्रेश हो गई थी। भाभी पल्लवी और अंतरा ने मिलकर उसे विदाई के लिए तैयार भी कर दिया था। आहाना एकदम खामोश थी, बस रह रहकर उसकी आंखें भीग जाती। तीनों मिलकर उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, पर आहाना की विदाई का सोचकर और उसके आंसू देखकर उनकी खुद की आंखें हर दूसरी घड़ी भीग रही थी। समाज की भी ये अजीब ही रीत है। जिस घर में जन्म हुआ, बचपन से जवानी तक का सफर तय किया, जिन माँ बाप ने नाजो प्यार से पाना पोसा, जिन भाई बहनों के साथ अपनी जिंदगी के इतने साल हंसते खेलते बिताए, बस चुटकी भर सिंदूर मांग में पड़ते ही सब कुछ पीछे छूट जाता है। अपना होकर भी सब पराया बन जाता है। खुद पर खुद से ज्यादा किसी और का हक हो जाता है और ना चाहते हुए भी आंसुओं के सैलाब में डूबते हुए, दर्द भरे घूंट की खामोशी से पीते हुए अपना सब कुछ छोड़कर उस अजनबी संग उन अनजान लोगों के बीच जाना पड़ता है जो अब उसका पति और नया परिवार कहलाता है।
दिल गमों में समुद्र में डूब रहा था। मन व्यथित था और दर्द रह रहकर आंखों से आंसू बनकर छलक आ रहा था। पल्लवी और भाभी कब से उसे कुछ खिलाने की कोशिश में लगी थी, पर उसकी हालत ऐसी थी कि खाना तो क्या, पानी की एक बूंद उसकी हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। और जैसे जैसे विदाई की घड़ी नजदीक आ रही थी, उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। पल्लवी और भाभी ने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। शैतान अंतरा ने जूते चुराने की रस्म तक नहीं की थी, सारे वक्त साय की तरह हाना के साथ थी, जैसे अपनी जीजी के साथ मिला एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दृशान जयेश जी के साथ मिलकर हाना के ससुराल वालों की खातिरदारी में लगा था और जयंती जी औरतों के साथ मिलकर विदाई की तैयारी कर रही थी। आहाना के साथ वैसे तो अभी ज्यादा सामान नहीं जाना था, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे वापस यहीं आना था, पर फिर भी देने लेने से लेकर जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज तो बेटी को देनी ही थी, ताकि उस नए घर में उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सो हर सामान 10 बार चेक किया जा रहा था। बाराती अब निकलने की राह देख रहे थे, कुछ शौक से इस मेहमान नवाजी का आनंद उठा रहे थे। वहीं अन्वय की बेचैन निगाहें हर ओर सिर्फ अंतरा को खोज रही थी। विवाह संपन्न होने के बाद से उसे अंतरा कहीं नजर नहीं आई थी, और उससे पहले भी अंतरा उसे दुखी लग रही थी, तभी तो उसका मन यूं व्याकुल और बेचैन हो रहा था।